प्रश्न है सभी से जीवन में सुख पाने के लिए, सफलता पाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। एक संकल्प दे दूं इससे पहले, समय अनुसार जहाँ समय पहुँचता नजर आ रहा है, हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। यदि हम कमजोर पड़ गए तो समस्याएं भारी पड़ जाएंगी। बोलो, अब चिंतन करेंगे सभी जीवन को सफल करने के लिए, सुखी बनाने के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए किन चीजों की जरूरत है। संतुष्टता, स्वमान, पवित्रता, सारों में से कुछ भी ना हो, सारों तो बहुत ज्यादा है, कुछ भी ना हो, सोच लो सोच लो। मैंने सुना है बेटी को बिंदी, एक्सपेक्टेशंस जीरो। पीछे वाली माताएं बताएंगी, पीछे बैठी ना चुप के, कोई पूछेगा नहीं, खड़े होके उत्तर दो जरा, इतनी ठंड नहीं है, क्या जरूरी है। खैर वो पीछे वालों को जरा, बहुत अच्छा उत्तर आप दे रहे, बाद में देना। पीछे वाली माताएं हाथ उठा के या खड़े होके उत्तर दो, बोलो। आगे आ जाओ माताएं, पीछे पीछे नहीं, आगे बहुत सीट खाली है। स्वभाव को सरल बनाओ, बहुत अच्छा उत्तर दिया, और अच्छे उत्तर दें, जोर से बोलो जो बाबा से शेयर करना है। थोड़ा कठिन काम है हर बात को शेयर करना, पर है अच्छी बात। आप बताओ, सोच लो, सब बोझ बाबा को दे दें, लेगा बाबा, लेता है क्या। अच्छा, और चित्त को शांत करने की कला सीखे, ये सबसे सुंदर पॉइंट है। ड्रामा को, इस सारे खेल को साक्षी होकर देखें। आज बिठाइए मुरली में और बोलो, कुछ चीजों को स्वीकार करें, कर्म फल। अरे कैसी आत्मा मुझे मिली, जिसको बेचारी को अपने को भी देखकर अपने पे तरस आता था, और आप भी सुने तो आपको भी तरस आएगा। मैंने पूछा नहीं वो कहाँ से है, उसका क्या नाम है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। एक बार सेंटर में जाके रही, फादर बीमार हो गया, सेवा के लिए घर आई, उसकी मृत्यु हो गई, फिर सेंटर में गई, फिर पता नहीं घर में क्या समस्या हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, फिर घर आ गई, 5 साल रही, फिर सेंटर में गई, फिर झगड़ा हो गया सेंटर में किससे, फिर घर चली गई। चेहरे पे उदासी थी, कहा कि मुझे दूसरी बहन बुला रही है, कोई बुरा ना मानना टीचर बैठी हो, दूसरी बहन बुला रही, मैं जाऊं। मैंने कहा अभी ना जाओ। क्यों, बोलो क्यों, यही वहां भी हो जाएगा। पहले अपने विघ्नों को योग से नष्ट करो, लेकिन समस्या ये है कि योग नहीं लगता। आज कई माताओं के ऐसे फोन आए जिनको घर में बहुत समस्याएं हैं। एक बड़ी समस्या आजकल चल रही है, पति देव अमृत पीने लगे हैं, जानते हैं ना कलयुग का अमृत, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लड़की सुनते नहीं, लड़की की शादी हुई थी वापिस आ गई है घर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तो योग लगाओ, समस्याएं हल हो जाएंगी। का योग ही तो नहीं लगता, सबसे बड़ी समस्या ये। मैंने कहा भाई फिर तो तुम्हारा मालिक शिव बाबा ही है, उसके बाद जाओ वो कुछ करे तुम्हारे लिए, वो योग लगा दे। एक बार बाबा ने कहा था ना, कई बच्चे तो सोचते हैं हमारे लिए योग भी बाबा कर दे। ऐसी स्थिति बढ़ती जाती है कई परिवारों में कि जिनका कोई हल समझ में नहीं आएगा, उनको नहीं समझ में आता कुछ भी। पति शराब पीने लगा है बहुत, घर में पैसा नहीं देता है खर्च के लिए भी, बच्चे न पढ़ते न सुनते, सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए हैं। आजकल बच्चों की सबसे बड़ी माया, पहले टीवी हुआ करती थी, अब मोबाइल है, फ्रेंड्स बना लिए दो चार, लग रहे फेसबुक और क्या क्या आ गए आजकल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, माताएं उत्तर देंगी। पहले भाई लोग तो चिंताओं को मिटाने के लिए शराब पीते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ आपसे ज्यादा चिंता उसको है, इसलिए विचार में सोचा पीपा के सो जाओ। लेकिन माताएं चिंता बहुत करती हैं, होती है, जब घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कोई भी व्यक्ति चिंतित होगा ही, कि होगा क्या आखिर। आजकल डाइवोर्स बहुत चल रहा, तलाक, लड़कियों की शादी हो जाए, पहले तो शादी करना कठिन, खर्च करें बहुत ज्यादा, और एक दो साल बाद वो घर आ जाए तो कितना भारी पड़ता है मनुष्य को। क्या कारण है इन समस्याओं के, भाई उत्तर देंगे। सबके हिसाब किताब अब चुकतू होंगे, ये बात सबको जान लेनी चाहिए। बाबा का बाप टीचर सदगुरु का पाठ अब पूरा हो रहा है, चल नहीं रहा, वो समाप्ति पर है, और अब धर्मराज का पाठ प्रारंभ हुआ है, हुआ है। इसलिए सारे संसार में बात ब्राह्मणों की नहीं है, संसार में भी बहुत लोग दुखी हैं, और ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही। सुखी कौन है दुनिया में भी, कलयुग में भी कुछ सुखी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कौन सुशील बताएगा। नहीं, ज्ञान का उत्तर दो, ये मैं ज्ञान का प्रश्न पूछा आपसे। देखो इस संसार में बहुत सारी आत्माएं परम धाम से 50 साल में उतरी है। 50 साल पहले संसार की आबादी 2.5-3 अरब के आसपास होती थी, 4 अरब आत्माएं उतर गई हैं 50 साल में। इनका एक जन्म, किसी का दूसरा, तो ये सुखी होंगे ना, पाप भी ज्यादा नहीं, तमो प्रधानता भी ज्यादा नहीं, आए थे ठीक ठीक पवित्र, सुखी, थोड़ा बहुत दुख उनको मिलता है। तो ऐसे कुछ लोग संसार में सुखी हैं, ये आत्माएं। जो पुराने हैं उनका दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब कर्मों का हिसाब सबको देना है। माताएं अपने से बात करें, मुझे भी देना है, मेरे बच्चों को भी देना है, पति को भी देना है, वो मेरे हैं इसलिए वो ठीक ठाक रहे। लोग कहते हैं तुम तो ज्ञान योग करते हो, तुम्हारे बच्चों का ये हाल क्यों, ये भी तो बात है ना, लोग बोलते हैं, बोलने वालों को तो कुछ मौका चाहिए। ज्ञान में आप चल रहे हैं, वो अपने गुस्से को किसी भी तरह से निकालेंगे। तो माताएं कहती हैं कि हमें सुनना बहुत पड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं उनकी चिंता, दूसरा सुनना बहुत अपने लोगों से, देखा तुमने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, ओम शांति में चली गई, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। जो ओम शांति में नहीं जा रहे उनका हाल अच्छा है क्या? मैंने कहा उनको तुम पूछो तुम्हारा हाल क्या है। प्रभु मिलन के मार्ग पर ये सब बातें तो सुननी पड़ती ही हैं। मैं आप सभी को भी तैयार कर रहा हूँ दो कार्यों के लिए, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं तो बहुत चीजों को स्वीकार करके ही चलना है, हल्का होना है, हमारे भी हिसाब सुख तो होंगे, हमारे परिवार के, आपके बच्चों के, सबके। लेकिन करना क्या है साथ में? मदद, मदद करनी है। और सबसे अच्छी मदद है योग युक्त माहौल बनाना। इसलिए जो भाई बहने अपने घरों में योग युक्त माहौल बना सकते हैं, उन्हें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम भी सवेरे सो रहे हैं क्योंकि मन उदास है। ये होता है ना, मन उदास है तो बाबा भी अच्छा नहीं लगेगा, मुरली भी अच्छी नहीं लगेगी। बाबा कहेंगे बाबा तो हमारे लिए कुछ करता नहीं, हमारे बच्चों को सुधारता नहीं बाबा। तो सवेरे भी सो जाएंगे, स्वयं का मन भारी होगा। जब 6 बजे उठेंगे सो के तो क्या होगा, उठते ही अमृत वेला मिस कर दिया तो बाबा क्या कहेगा। तो ये ऐसा सर्चिल हो जाता है जो मनुष्य की स्थिति को भारी कर देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, सभी अपने को तैयार करें। जितनी समस्याएं आपके जीवन में आए, बोलो आगे उतना ही हल्का रहना तो कठिन काम होता है जरा। उसके लिए तो बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। उतना ही अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, उतना ही योग तपस्या पे ध्यान दें, थोड़ा जल्दी उठें। ऐसे कई लोग करते हैं, समस्याएं परिवार में आ गई, अब 3 बजे उठ के योग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते, करने वाले बहुत हैं, अच्छा अच्छा करते हैं तो बहुत जल्दी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे ऐसे केस भी देखे कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, योग ही नहीं लगता, मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास चालू कर दिया, सोते हुए भी, रात को नींद खुली तब भी, सवेरे उठे तब भी, भाई कुछ न करने से कुछ करना तो अच्छा है ना। और थोड़े दिन में समस्या ठीक हो गई, भयानक भयानक समस्याएं भी ठीक होती हैं। इसलिए जब समस्याएं आए तो ध्यान देना है, अपने को भारी और सुस्त न बना के शक्तियों को बढ़ाए। और ध्यान दे मुरली पे, नहीं तो मुरली छोड़ देते हैं। जहाँ से समाधान मिलेगा वही छोड़ दिया, क्या स्थिति होगी मनुष्य को। मैं ये आजकल जो देख रहा हूँ तेजी से बढ़ता हुआ, मैं तो थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ आपको। जब भी फोन खोलो स्टूडेंट के फोन, क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन नष्ट हो गई है। अभी मैं आ रहा, किसी को मैंने जरूरी फोन किया, तो फोन खोला ही तो फोन आया, भाई जी 4 दिन से आपको ट्राई कर रहा हूँ, क्या कोटा में पढ़ने आया हूँ, मेडिकल में जाना है, 12वीं तक मैं बहुत फर्स्ट क्लास टॉप क्लास स्टूडेंट रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया यहाँ आकर एकाग्रता बिल्कुल खत्म हो गई। आया हूँ तैयारी करने, एंट्रेंस का एग्जाम होता है एडमिशन लेने के लिए, अच्छी तैयारी करते हैं बच्चे, कोटा में बहुत चल रहा है ये, 1 लाख स्टूडेंट रहते हैं कम से कम कोटा में सारे साल, उनके हॉस्टल बने हुए हैं, टीचर्स में लोगों ने खोला हुआ है कोचिंग सेंटर, बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम चलता है। तो मैंने कहा कि फिर समाधान देख लिया करो, कहा नहीं हम तो हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ टीवी नहीं होती। तो मैं पूछा उससे आखिर कारण क्या है तुम्हारी एकाग्रता क्यों नष्ट हुई, कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता, न पढ़ने को मन करता है। देखिए पहली बात, ये बहुत होने लगा है आजकल 4-6 मास से। एक तो हुई एकाग्रता नष्ट, एकाग्रता सेकंड बात, लेकिन पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा। पढ़ने गए हैं, स्वेच्छा से पढ़ने गए हैं, तो 1 लाख खर्च करके गए हैं, कोचिंग सेंटर में एडमिट हुए हैं कि हम तैयारी करेंगे बहुत अच्छी, लेकिन पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? सूक्ष्मता से सोचना है, ये समय का प्रभाव है बहुत ज्यादा। और इससे हम सबको भी बचना है। विकार इमर्ज हो गए हैं, निगेटिविटी इमर्ज हो गई है। जो जन्म जन्म कुछ भी गंदगी बुद्धि में भरी है वो इमर्ज होने लगी है, तो वो इफेक्ट कर रही है दिमाग पर सबके। बहुत ज्ञानी योगी भी सुनाते हैं, 20 साल से ज्ञान में है, अचानक ही न मुरली सुनने को मन करता न योग लगाने को। अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, बिल्कुल पर्सनल बात करते हैं और चुपचाप कह देते हैं किसी को बताना देना। मैंने कहा बताने की बात तो है नहीं भाई, इससे समस्या है, इसका समाधान करना है, इसमें बताने से तो कुछ होगा नहीं। ये बढ़ रहा है, इसलिए सबको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, अमृत वेले मिस न करें। दो चीजें, मुरली और अमृत वेला जो बाबा ने वरदान दिए हैं, इसको कभी मिस न करें और अपने को रोज सवेरे जगाएं। समझ गए? 4-3.5 बजे उठ के जगाएंगे अपने को। क्या हूँ मैं? कौन मुझे साथ दे रहा है? बाबा ने मुझे क्या क्या वरदान दिए हैं? बाबा ने मुझे क्या क्या योग्यताएं दी हैं? मैं कौन हूँ? बाबा मुझसे क्या महान कार्य कराएगा? मैं अपने को बाबा के महान कार्य करने के लिए तैयार कर लूं। बाबा की नजर मुझ पर है, संसार में दुख शांति बढ़ रही है, मैं सबको सकास दूं, ऐसा पावरफुल बना दूं अपने को। चिंतन करके स्वयं को जगाए रोज। दुनिया में भी हाल कम नहीं, समाचार सुनो तो दुख भरे समाचार ही जहाँ तहाँ से सुनने को मिलेंगे। वहाँ इतने मर गए, हॉस्पिटल में ये गड़बड़ हो गई, वहाँ इतने मर गए, डॉक्टर्स ने ये गड़बड़ कर दी, फलाइन जगह इतने मर गए, बहुत कुछ। अच्छा, समझ में तो ये आता है कि डॉक्टर की गलती से हो गया, पर सच तो ये है गलती अपनी कर्मों की है। भला नहीं तो नसबंदी में लोगों की कहीं मृत्यु होती है क्या? 10 मिनट का ऑपरेशन होता है, भेज देते हैं फटाफट, 1 घंटा रेस्ट करा के जाओ, सब मर गए उसमें। क्या हुआ सुना? एक्सपायर डेट, दवाई खिला दी डॉक्टर, चूहे मारे। तो मनुष्य मरेंगे जब चूहे मर सकते हैं। तो ये गलती क्यों हुई नर्सिस से या जो भी हमारा स्टाफ था, इसके पीछे कर्मों का खेल। दिखता तो ये है भाई इन्होंने गलती की, प्रैक्टिकल तो वही है इन्होंने गलती की, अंधेरे में उठा के दे दी थी क्या गोली। तो वो बुद्धि उसी तरह से काम करने लगती है जो भावी होने वाली होती है, कि चलो देनी थी इस डब्बे से, दे दी इससे, लो भाई, उन्हें तो विश्वास रहता ना इसमें रखी है, लो फटाफट खाओ और जाओ परम धाम। कर दिया ना ऐसा काम। पैसे बचने के लिए पहली ये दो बात सभी पक्की करें, और तीसरी बात चाहिए हमारे पास ज्ञान का बहुत बल। इस बात पे आप ध्यान दें बहुत, मुरली उससे मिलेगा ज्ञान का बल। मुरली का बहुत आनंद लें, और दिन में एक बार कोई अव्यक्त मुरली पढ़ना अपना नियम बना लें। उसकी मुख्य बात लिखना। देखो, एक बहन ने मुझे बताया, शायद मैंने पीछे भी यहाँ बताया था आपको, रिटायर हुई वो, कहा मुझे अब कोई काम तो है नहीं, बच्चे बच्चे सब ठीक ठाक अपने अपने घर में हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा योग तो कर ही लेना, पर मेरी राय है पहले दिन की अव्यक्त मुरली से शुरू करके मुरलियाँ पढ़ो, सारी हजारों हैं, और उनके मुख्य पॉइंट्स लिखना। माताएं ये काम कर सकती हैं, इसमें टाइम होने या न होने की बात नहीं, टाइम सबके पास है। बताया मुझे कि मेरे जीवन के सबसे आनंदित दिन शुरू हो गए, और योग तो उससे आप ही सुंदर लगने लगा, क्योंकि 69 की मुरलियों में भी बहुत बहुत गुह्यता है। ये पहले की मुरली और 2000 तक उसके बाद भी थोड़ी बहुत गुहे चली हैं, बहुत गुहे जिसमें सारे गुह्यतम रहस्य भरे हुए हैं, उनको यदि हम इस तरीके करें, नोट करें, उन पे चिंतन करें, कुछ चीजें प्रैक्टिस की होती हैं उनकी प्रैक्टिस करें, कई सुंदर स्वमान उनमें आते हैं उनको अभ्यास में लाएं, तो जीवन में कोई समस्याएं रहेंगी नहीं। ज्ञान योग छूटता है तो समस्याएं प्रबल होती हैं। तो हम फिर वहीं आ जाएं जहाँ से चले थे। पहला सुंदर गुण सॉफ्ट नेचर, सरल स्वभाव, सभी स्वभाव पे ध्यान दें, सरल स्वभाव। एक उदाहरण देता हूँ, सच्चे ये मेरे उदाहरण सच्चे हैं, एक कहना ही मेरे बात अभी कुछ दिन की बात है कि मेरी बड़ी बहन जो मैरिड है उसका पति गहरे डिप्रेशन में चला गया है, उसे बाहर आने का कोई तरीका दिखाई नहीं देता, डॉक्टर दवाई दे देते हैं तो सारा दिन सोया रहता है, गहरा डिप्रेशन। मैंने पूछा हुआ क्या, किसी की मृत्यु हो गई, कोई प्रियजन होता है उसकी मृत्यु, कहा नहीं, बता दिया मेरी जो बहन है बड़ी कर्कश है, समझिए बात, सर्कस नहीं कर्कस, कहा बोलती है कुटिल वाणी, और वो पति जो था बेचारा बहुत जेंटिल सीधा साधा, सुनता गया, केवल 10 साल की बात है, आयु 30 साल से ज्यादा नहीं, सुनता गया, समाता गया, सहन करता गया, और आखिर दिमाग पर बुरा इफेक्ट आ गया। मैंने कहा उससे पूछो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, ये ऐसा उदाहरण मिला प्रैक्टिकल, और ये बहुत हो रहा है, कोई सज्जन व्यक्ति होता है उसको दूसरा व्यक्ति बहुत बोलता ही रहे, और वो सुनता रहे अंदर घुटता रहे मरता रहे, तो डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, सहन न करो, उत्तर दो, गुस्सा करो, निकाल दो उसको बाहर, तुम सहन करते रहोगे, दबते रहोगे, घुटते रहोगे, तो ये हाल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, क्योंकि या तो सहन शक्ति, कौन सा शब्द है इसके साथ, शक्ति, अगर केवल सहनशीलता है, सहन शक्ति नहीं है, तो ये हाल होना संभव है, इसलिए हमें सरल स्वभावी होना चाहिए, वाणी बड़ी सुखदाई। अब कैसा रहेगा उसका जीवन, अकेली हो गई ना वो जीवन में, किसको कटु वचन बोलेगी, बच्चे छोटे, दो छोटे छोटे बच्चे, जीवन खराब हो गया ना, इसलिए मनुष्य के अपने संस्कार ही उसके जीवन को दुखद बनाते हैं। तो बहुत ही एक सुंदर चीज है सीखने की, बोल बहुत नम्र, स्वभाव बहुत सरल, बोल बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कहीं कहीं जो बड़ा होता है मालिक, इंचार्ज, घर का बड़ा, वो छोटों को कटु वचन बोलता रहता है, कुछ अधिकार है उसे, और कहीं कहीं ऐसा होता है छोटे लोगों को चुप रहना पड़ता ही है, तो ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है, और इसका रिटर्न बहुत बुरा होता है। रिटर्न माना जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो डबल होकर हमारे पास वापिस आएगा। आज हम खुश हो गए कि हमने इनको बहुत बोल दिया, कितने अच्छे हैं हम, लेकिन कल उसका दुष्परिणाम हम पर भी आएगा, जैसे इस बहन पे आ गया ना, अब वो संसार में अकेली हो गई, अब उसके माँ बाप भी जानते हैं ये कटु वाणी बोलती है, सारे लोग जानते हैं, अब सब उसे बार बार कहते तुम्हारे कारण हुआ है, अब तुम्हें इसका फल भोगना ही पड़ेगा, तुम इसके जिम्मेदार हो। माँ बाप ने कहा हम नहीं रख सकते तुम्हें, वो भी दुखी उससे। तो मनुष्य को हमेशा सुखदायी वचन बोलने चाहिए, नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, अपने ही अपनों को कष्ट दे रहे हैं। पढ़ाया उसे कष्ट नहीं मिल रहा अपनों से, और क्यों अपनों से मिल रहा है, किताब किताब उनसे ही है ना, पढ़ाई उसे थोड़ा ही है। एक परिवार में पांच लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इसीलिए हुए है ना कि कर्मों का नाता सबका एक दूसरे से बंधा हुआ है, इसलिए हम बहुत सुखदाई बने। हम सब चिंतन करें, हम बाबा के बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं, सुखों के सागर के बच्चे हैं, और हमारा कार्य भी विश्व कल्याणकारी का है। हम सुखदाई बने। आज की क्लास से सभी अपने अंदर ये स्वमान ले लें, हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमारा जन्म भी हमारा जीवन भी दूसरों के दुख हरने के लिए है। मुझे बाबा की ये बात बहुत याद रही, सुन ले आप, जब तक तुमने सबको दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर मुक्ति धाम नहीं जा सकोगे। याद करें सब, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं विश्व कल्याण के कार्य में, अच्छा सहयोग बाबा को देते हैं, वो इस पे ध्यान दें। अब आप सोचो, एक छोटा सा उदाहरण ले लें, एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का दूसरे लड़के को बहुत तंग करता है, दुखी करता है, तो बाप किसे ज्यादा प्यार करेगा? माताएं बताओ, आप किसे ज्यादा प्यार करेंगे, या जो दुख दे रहा है तंग कर रहा है उससे आपकी दृष्टि नहीं रहेगी, उसके लिए प्यार नहीं रहेगा, आशीर्वाद नहीं रहेगा, होगा ना ये? और जो सहन कर रहा है उसके सिर पे तो हाथ रखेंगे ना, कोई बात नहीं, इसकी आदत है, तुम चुप रहना नहीं तो लड़ाई होगी, कहिए ना अच्छी अच्छी बातें। भगवान के बच्चे भगवान के बच्चों को सता रहे हो, बोलो, सताने वालों को प्रभु प्यार मिलेगा। इसलिए बाबा ने कह दिया था साकार में, जो सुखदाई हैं उन्हें बाप का बहुत प्यार मिलता है, जो सुखदाई हैं वो शिव बाबा को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उसके हैं ना सब, जिन्हें दुख दिया जा रहा है वो उसे ही पुकारते हैं ना, ज्ञान में भी होंगे तो उसे ही कहेंगे बाबा, कहेंगे इसे सुधारो। लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं, क्या करना चाहिए बाबा को, उसे सुधारो, वो सुधर गया और हम वैसे रह गए। बाबा से योग लगाकर स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि दूसरे के कटु वचन हमें कटु लगे ही नहीं, ये सरलता है। दूसरा कटु वचन बोल बोल के हार जाए और हम मुस्कुराते रहें, हो सकता है या नहीं, हो सकता है ये भी, केवल हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, कमजोर आत्माएं ये नहीं कर पाएंगी। तो बाबा का भी हमें प्यार पाना है, उसकी ब्लेसिंग्स दुआएं पानी है, तो हम सुखदाई बने। जो दुखदाई हैं उन्हें बाबा की दुआएं नहीं मिलती, वो बाबा की नजरों से दूर चले जाते हैं। साकार मूल्यों में ये बातें आती थी, पर पीछे लोगों ने देखा ये बड़ी भारी लैंग्वेज है, तो हटा दिया उनको। क्या जो ऐसे बच्चे हैं बाबा उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता, लोगों को लगता है भगवान क्या बोल रहा है, खतरनाक बात हो गई बहुत, लेकिन सत्य यही है, बाबा की नजर उनसे हट जाती है, और जब उनपे समस्याएं आती हैं वो तो बाबा को पुकारते हैं, पर बाबा की नजर उन पर नहीं आती है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, सुखदायी और सरल चित, सॉफ्ट नेचर। सभी ये समझ लें कि यदि हम परेशान हैं, यदि हम दुखी रहते हैं, यदि हमें जीवन में चैन नहीं है तो उसके जिम्मेदार बोलो माता है पीछे वाले, उसके जिम्मेदार पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलो ऊपर उसके देख रही माता है, बोलो मुख से उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम अपने को बदलेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं एक बात सुनाता रहता हूँ यहाँ क्लास में और वो बार बार सुननी ही चाहिए, मैंने भी उसको अप्लाई किया जीवन में, बहुत शुरू से ही किया था, अब से बहुत साल पहले, 47 साल पहले बाबा की मुरली में सुना, आती रहती है ये बात, बहुत सुनी है हम सब ने। ज्ञानी आत्माएं वे हैं जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति सर्दी गर्मी में समान रहे। तो मैंने सोचा अगर अपमान ही ना हो तो समान रहने की बात कहाँ, अगर दुख ही ना आए तो समान रहने की बात क्यों, अगर निंदा कोई करे ही नहीं तो समान रहने की बात ही नहीं, ये सब चीजें हो फिर हम समान रहे। तो मुझे याद है हम तभी ताजा ताजा पढ़ के आए थे तो एक बात बहुत अच्छी लगती थी, हिंदी के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए यूपी में पंडित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसिद्ध राइटर थे वो, उनकी उनके लेख हमारी किताबों में आते थे, तो उन्होंने निंदा सुख एक लेख लिखा हुआ था किताबों में था, निंदा सुख, दूसरे की निंदा करके माताएं कितना सुखी होती हैं, ये लेख था पूरा। अगर 2 घंटे निंदा करते रहे तो अतिंद्रिय सुख लेकर उठते हैं, वाह बड़ा मजा आया, आज असली दिल की बात हुई। तो मैंने इसको ऐसे सोचा, उसमें ही कुछ लाइनें थी, शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो महिमा सुनकर जितना आनंदित हो ग्लानी सुनकर भी उतना ही आनंदित हो। उसका डिटेल तो उसमें नहीं था, उसका डिटेल बाबा के यहाँ मिला। तो एक बात ख्याल में आ गई कि मनुष्य की महिमा भी होगी, हम अच्छा काम करें तो महिमा तो होगी लेकिन ग्लानी भी होगी। ऐसा कोई मनुष्य हुआ नहीं जिसकी कभी ग्लानी न हुई हो। स्वामी विवेकानंद का नाम कितना ज्यादा है लेकिन जब वो थे लोग उनके पीछे ही पड़े हुए थे। कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी भारत की भी और विदेश की भी, क्रिश्चियन मिशनरी भी, जो उनको कुछ नहीं करने देना चाहती थी, ग्लानी ही ग्लानी उनकी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन जो मनुष्य शक्तिशाली है वो ग्लानी से रुकते नहीं, पीछे नहीं हटते, बल्कि शक्तिशाली मनुष्य जितनी ग्लानी हो उतना ही और दृढ़ता से काम करते हैं। देखो आज उनका नाम है चारों ओर, उन्हें युग पुरुष का टाइटल दे दिया गया। एक ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, उसकी कॉपी मुझे भेजी, ये पता नहीं वो ब्रह्मा कुमार है या कौन है, हमें कैसे जानता है, 5-7 लोगों को भेजी बस भारत में, तो मुझे भेजी, पता नहीं वो कैसे जानता है, प्रधानमंत्री महोदय अब से 100-125 साल पहले पूजनीय नरेंद्र जी हुए थे, विवेकानंद का नाम नरेंद्र था जिसने भारत का नाम रोशन किया था, अब दूसरे आप पूजनीय नरेंद्र जी आए हो, आप भी भारत का नाम रोशन करें। पूरा पत्र लिखा, हाथ से लिखा, टाइप नहीं है, उसकी कॉपी करा के सबको भेजी है और आप ये काम करो, राय देते हैं ना सब, उसने भी मांगी है किसी को राय हो तो अपनी भेजो। और उसमें यही था कि आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों से शुरू करो 5वीं क्लास से। तो अपना एक उदाहरण लिखा था, जब मैं 6वीं क्लास में आया तो हमने ये पढ़ा था, वो ज्ञान की बात नहीं थी, शास्त्रों की बात थी। तब मुझे लगा ज्ञानी तो लगता नहीं है, उसकी लैंग्वेज से ऐसा ही लग रहा था। तो देखो जो व्यक्ति बड़े काम करेगा या करना चाहेगा उसके मार्ग में तो बाधाएं आएंगी, लेकिन जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति को, हमारी भाषा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को न छोड़े, अपने मन की दृढ़ता को न छोड़े, अपने लक्ष्य को न छोड़े, वो आगे बढ़ते जाते हैं। इस बात का सबको ध्यान रखना है। तो दुख की बातें आएंगी, लोग ग्लानी करें। अब दो स्थिति हैं, किसी ने हमारी ग्लानी की और हमारा मूड ऑफ हो गया, हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली। हम इतना अच्छा काम करते हैं, फिर भी ये लोग पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। देखा मेरी दीदी को भी मेरी शिकायत कर दी, अब दीदी क्या सोचेगी, न जाने क्या क्या सोच के मनोस्थिति बिगाड़ ली। एक स्थिति। दूसरी स्थिति बोलो, दूसरी स्थिति क्या होगी बोलो। पॉजिटिव सोचें, मैं सत्य हूँ, जिधर सत्य है उधर भगवान होता है, सत्य की जीत अवश्य होगी, सत्य को कोई दबा सकता है, झूठे तर्कों से झूठा सिद्ध कर सकता है, पर सत्य का सूर्य क्या बाबा के महावाक्य, ये काले बादल छट जाएंगे, सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा, वो ये सोचेगा। दीदी को शिकायत कर दी तो क्या हुआ, मैं अपनी सत्य बात रख दूंगा, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, इन बातों से बहुत मूल्यवान है मेरी स्थिति, ऐसा सोचकर व्यक्ति अपनी स्थिति को कायम रखे। ये पॉजिटिव अप्रोच है, हमें यही अप्रोच रखनी है, यही चिंतन रखना है और ध्यान देना है कि सबसे अधिक कीमती हमारी स्थिति है। अपनी अपनी स्थिति को सभी खुद वैल्यू दें, खुद वैल्यू दें। हमारा एक एक संकल्प मूल्यवान है। हमने अपनी स्थिति 10 साल में बनाई हो, बिगड़ने में कितनी देर लगती है फर्स्ट से, इसलिए हमें अपनी 10 साल की कमाई 1 सेकंड में नष्ट नहीं करनी है। ये बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, बाबा ने कह दिया है, ड्रामा में जो अब हो रहा है वो अगले मिनट नहीं होगा, हर सेकंड बदलता जाएगा, इसलिए ये बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। ऐसी दृढ़ता सभी अपने अंदर कर दें। हाँ, और ये भी याद रखें कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या देना पड़ेगा, परीक्षा। बिना परीक्षा के तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। देखो, कोई स्टूडेंट बहुत होशियार हो और परीक्षा होती ना हो, कैसा लगेगा उसे, कहेगा किसी को पता ही नहीं मैं होशियार हूँ, लगेगा ना बच्चों को भी। और बच्चों ने परीक्षा दी और नंबर आ गए 95, तो खुशी होगी ना, देखो सबको पता चला मैं बहुत होशियार हूँ। छोटे बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो हमारी भी परीक्षा होनी ही चाहिए। हम अपने मार्क खुद तय करेंगे, बाबा ने बता दिया है कि बाबा कहीं बोर्ड पे लिखेगा नहीं, इसकी फर्स्ट डिवीजन आई, ये 80 रतन हो गए, ये 108 हो गए, लिखा कहीं नहीं जाएगा। ये हर आत्मा स्वतः ही अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष करेगी। तो समय की नाजुकता को हम गहराई से समझकर अपने कदम तेज बढ़ाएं, सभी ध्यान दें, माताएं भी और भाई भी, अपने पुरुषार्थ का सुंदर प्लान रखें। ये बात आ जाए तो हम कैसे अपनी स्थिति को अचल अडोल रखेंगे, किसी की मृत्यु हो जाए तो कैसे हम अचल अडोल रखेंगे। देखो, आज ही हमें क्लास में सुनाया दीदी निर्मला ने, वो बहन ने शरीर छोड़ दिया ना राजेश्वरी, तो कहा उसके पति की बहुत अच्छी स्थिति रही, तो ये सब कुछ ऐसे हो गया 3 मिनट में, हार्ट अटैक हुआ बहुत ज्यादा, और बस देखते देखते खत्म। लेकिन उसके पति की स्थिति बहुत अच्छी रही। ये वो कहता था इसने बहुत अच्छी अपनी कमाई कर ली, बहुत अच्छी स्थिति बना ली, ये भी तो अच्छा है ना, कष्ट न हो मृत्यु में, हॉस्पिटलों में न पड़े रहे, 10-20 लोग सेवा करते रहे, पैसा भी खर्च होता रहे, वातावरण भी ऐसा होता रहे, अपना हंसते बैलते यात्रा करते गए। तो ये किसी भी आत्मा के पुण्यों का प्रभाव है ना, जरूर ऐसी आत्माएं गुप्त रूप से अंदर ही अंदर अच्छी साधनाएं करती रही है ना, बाबा से बहुत प्यार रहा है, अपने पुण्य कर्मों का खाता भी बहुत ज्यादा है। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। मैं सबको आज कल ये बात याद दिला रहा हूँ, क्योंकि संसार में मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं और 2-4 साल में इनका बहुत भयानक रूप दिखाई देगा। मुझे तो 6 मास में दिखाई दे रहा है कितने लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, खुशी नष्ट होती जा रही है, घर घर में दुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें क्या करना है, अपने लिए बहुत हल्के और बहुत खुश, जो हल्के नहीं है उन्हें दूसरों की हर बात इधर आ जाएगी, ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करेगी, कोई डिप्रेशन में आएगा, किसी को नींद नहीं आएगी, कोई परेशान रहने लगेगा, कोई बहुत दुखी रहेगा। ये सब स्थिति तेजी से आ गई है, जो मैंने आपको इशारे में बताया। बाबा कहीं डिक्लेयर तो नहीं करेगा कि धर्मराज का पाठ शुरू कर दिया मैंने, ये तो हमें दिखाई देगा यही कि वो शुरू हो गया है। और बाबा जो साकार में कहे थे वो स्थिति संसार की बनती नजर आ रही है। क्या कहा था, कड़वे शब्द है वो भी, भगवान के कड़वे शब्द नहीं, हमारे लिए बाबा तो हमें रोशनी देता है ना, ऐसा समय आ रहा है। देखो 2 साल पहले की मुरली में, हर मुरली में आया था, समय नाजुक आने वाला है। तो साकार में बाबा ने कहा था विनाश के समय ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, डॉक्टर वो भी मेंटल बन जाएंगे, क्योंकि निगेटिव वाइब्रेशन इससे ज्यादा आएंगे। देखो एक व्यक्ति मेरे पास आया, अभी लास्ट बात सुना देता हूँ, जेलर है वो महाराष्ट्र में कहीं, और उसकी जेल में भयानक आतंकवादी रहते हैं, काकाताब जो था ना वो भी हमारी जेल में था। तो कहा देखो ये बात भी बहुत अच्छी तरह ध्यान देने योग्य है, कहा मैं बहुत पावरफुल होके रहा हूँ जीवन भर, और अब तो 5 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन अब इन कैदियों की निगेटिव एनर्जी मुझ पर असर डालने लगी है। बहुत पावरफुल व्यक्ति, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, उसके चेहरे से ही दिख रहा था कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। जेलर माना वैसे भी एक अच्छी बड़ी पोस्ट हो गई है, जेल सुपरिंटेंडेंट होता है वो, और एक ऐसी जेल उसको दी हुई है जिसमें उसको सिक्योरिटी बहुत रखनी होती है, जरा भी गड़बड़ ना हो जाए। कहा मैं अब तक ऐसा महसूस करता था मेरे वाइब्रेशन उनको जाते हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों से, कुछ दिन माने 1 मास, ऐसा लगता है उनके निगेटिव वाइब्रेशन मुझे आने लगे हैं। मेरा मन अचानक डिप्रेस हो जाता, उदास हो जाता है बैठे बैठे। तो मैंने उसको 3-4 विधि सिखाई अच्छी, तुम क्या करो सवेरे से जेल में जब जाओ, अपने ऑफिस में बैठो 10 मिनट, क्या करो, चक्कर लगाओ तो कैदियों को किस नजर से देखो, उन्हें वाइब्रेशन जाए। तो ये स्थिति संसार की बनती जा रही है, संसार की नेगेटिव एनर्जी। और ये क्यों हो गई है नेगेटिव एनर्जी, और बाबा की मूल्यों में आता रहता है, संसार में काम विकार की आग लगी हुई है, उसके कारण ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो हम खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, वाइब्रेशंस देंगे ओम शांति।